ఓం శాంతి.
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा. पार कर जो नारे जीत उसी की होती है, गंगोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है. जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे. ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल तल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवान, भगवान के संग समय करो सफल. जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. ओम शांति.
थैंक यू.
बहुत बहुत शुक्रिया भैया. अभी भाई जी आ चुके हैं, तो जो लोग भी बाहर हैं अगर आपके कांटेक्ट में हैं, तो क्योंकि ये आवाज बाहर तक नहीं जाएगी, सबको फोन करके बुलाएंगे. और जहां भी आवाज जा रही है सबसे अनुरोध है,
आयो लाल सभी जाओ बेड़ी वारा दाड़े मुहाड़ा लाल ने थी वन्या, बेड़ी वारा दाड़े मुहाड़ा लाल ने थी वन्या, लाल ने थी वन्या, ओ वन्या मत आखो पाइण थी वन्या, लाल ने थी वन्या, ओ वन्या मत बस्यू बसण थी वन्या, बेणी वारा अदाणे मुहाणा लाल ने थी वन्या असांजे लाल ते ज्योतियूं जो बरंदियूं ज्योतिने लाए थी शमा असांजे लाल ते ज्योतियूं जो बरंदियूं ज्योतिने लाए थी शमा ओ शमा शमा ज्योतिने लाए थी शमा बेड़ीअ वारा दाणे मुहाणा लाल ने थी वन्या असांजे लाल ते देगियूं जो चढ़ंदियूं देगियुनि लाए थी दमा असांजे लाल ते देगियूं जो चढ़ंदियूं देगियुनि लाए थी दमा ओ दमा दमा देगियुनि लाए थी दमा बेड़ीअ वारा दाणे मुहाणा लाल ने थी वन्या असांजे लाल ते पलउ जो सुहंदो लरियुनि लाए थी लमा असांजे लाल ते पलउ जो सुहंदो लरियुनि लाए थी लमा ओ लमा लमा लरियुनि लाए थी लमा पिणीअ वारा दाणे मुहाणा लाल ने थी वन्या असांजे लाल ते बहिराणो जो सुहंदो छेजियुनि लाए थी छमा असांजे लाल ते बहिराणो जो सुहंदो छेजियुनि लाए थी छमा ओ छमा छमा छेजियुनि लाए थी छमा बेड़ीअ वारा
युग में तुमको आना है शिव पिता को अब याद करो ये संगम का स्वर्णिम युग है शिव पिता
ओम शांति। एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से भाई साहब का हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और मैं रोमा बहन से अनुरोध करूंगी कि वे आए और भाई जी का पुष्प गुच्छ से भी स्वागत करें। भाई जी हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी, जिनको दूसरा नाम हम कहते हैं मुरली वाले भाई जी, 1960 में जन्मे इस अलौकिक रत्न को तराशा शिव बाबा ने, और 1971 में वो माउंट आबू में आए और उसी समय समर्पित होने का संकल्प लिया। 1972 में भाई जी ने सिंधी भी टाइपिंग सीखी। सिंधी भाषा का ज्ञान न होते हुए भी आज सिंधी भाषा जो हम सब नहीं पढ़ पाते, यदि मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो भाई जी को सिंधी पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। सिंध हैदराबाद में हुई शुरुआत शिव बाबा की वाणी सारी सिंधी में थी। 1972 से ये कार्य भाई जी को सौंपा गया कि उसे हिंदी में, जिसे हम प्यार से मुरली कहते हैं वाणी को, उसे हिंदी में टाइप करके पूरे भारत अपितु पूरे विश्व में भेजा जाने लगा और ये सेवा भाई जी को मिली। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज भाई जी हमारे बीच हैं, और खास ब्रह्मा बाबा जिनका लौकिक नाम लेखराज कृपलानी, उनका इतिहास बताने के लिए लेखराज से ब्रह्मा तक के सफर का आप सजीव चित्रण भाई जी के बोल के साथ देखेंगे। और न जाने इस मार्ग में भी कितनी समस्याएं आती हैं, पद जितना बड़ा परीक्षाएं उतनी बड़ी। खास भाई जी को समर्पित करती हूँ पंक्तियां कि सुंदर सुर बनाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसुखिये परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने के लिए मैं आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है कश्तियों के अंदाज को, समंदर तो परखता है कश्तियों के अंदाज को, मैं डूबी कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच हैं। उसी विषय को लेकर लेखराज से ब्रह्मा बनने का सफर, स्टोरी ऑफ फाउंडर, आदरणीय राजू भाई जी। शांति।
ओम शांति। आप सभी जिस परिसर में बैठे हैं उसका नाम क्या है? मन मोहिनी मन। शायद मन मोहिनी दीदी की कहानी भी आपको कोई कोई को मालूम होगी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसका बहुत सुंदर इतिहास आप सब सिंध प्रांत के भाई और बहने जानते और कुछ सुनते, कुछ भ्रांतियां और कुछ अच्छी बातें भी बुद्धि में हैं। उसी परिवार से आप सब हैं। बाबा जिनका लौकिक जन्म 1876 15 दिसंबर 1876 को हुआ, एक छोटे से गांव में बाबा जन्मे, जिनका लौकिक नाम लखीराज बाबू पड़ा। उनके पिताजी एक अध्यापक थे, घर में भी भक्ति पूजा पाठ और दान की भावनाएं वैसे भी सिंधी भाई बहनों में बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन एक ऐसे परिवार में बाबा का लालन पालन हुआ जो बहुत भक्तिमय था, और बाबा के संस्कारों में भी बचपन से ही
पूजा पाठ भक्ति गुरुओं के प्रति श्रद्धा भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। एक इतिहास में आता है कि बाबा जी के जो लौकिक पिताजी थे, अंत समय में उनकी इच्छा हुई कि मुझे काशी वास करना है, क्योंकि काशी का मृत्यु गाया हुआ है बनारस में। तो अपनी कहानी में बाबा खुद ही बताते कि जब हमारे पिता ने कहा कि हमें काशी वास करना है, तो हमने उन्हें लास्ट दिनों में काशी में ही रखा। बाबा के इतिहास में, जीवन चरित्र में भी बनारस का बहुत बड़ा स्थान है। वैसे तो आपका व्यवसाय कलकत्ता में था, मुझे कहा गया कि बाबा के जो पार्टनर थे उनका पोता भी इस ग्रुप में आया हुआ है बैठा है क्या? कल बता रहे थे सिलू बहन जी कि जो बाबा के साथ बिजनेस करते थे हीरे जवाहरात का कलकत्ता के अंदर, उनका जो पोता है वो इस ग्रुप में आया हुआ है। उनको मिला होगा, यहाँ नहीं है शायद ना? राखी बहन है क्या? है? निकल गए, ज्ञान सरोवर चले गए। अच्छा, बाबा के संस्कारों में भक्ति के बहुत गहरे संस्कार, बहुत पक्के संस्कार थे। और बाबा ने करीब अपनी लाइफ में 12 गुरु किए थे। जिस गुरु से कुछ भी मिले तो गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा थी, भावना थी। और बाबा का जो पहला घर हैदराबाद में था, जो भी सिंध हैदराबाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हो गया, पहले तो भारत ही था, तो वहां पर बाबा के घर में ही सत्संग चलता था। और बाबा कलकत्ता के अंदर हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, बहुत बड़े जवाहरी थे। और उनका राजाओं महाराजाओं के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। ब्रिटिश राज्य था उस समय, राजाओं का बहुत बोलबाला था। यहाँ उदयपुर है, बड़ौदा है, उधर नेपाल है, जो भी राजाई घराने में बहुत शौक होता है ज्वेलरी का, तो बाबा नए नए प्रकार की ज्वेलरी बनवाते और उनके घरों में खुद जा कर के सप्लाई करते थे। तो राजाओं महाराजाओं के साथ भी अच्छा संबंध था, लेकिन भक्ति के संस्कारों में श्री नारायण की अनन्य भक्त थे। शायद सुना होगा नेपाल में काठमांडू के अंदर विष्णु चतुर्भुज का एक लेटा हुआ खीर सागर में चित्र है, बहुत बड़ा मॉडल है। बाबा उसके दर्शन करने के लिए समय पर समय जाते थे। और श्री नारायण का फोटो बाबा के पॉकेट के अंदर सदा ही रहता था, जब समय होता उसको देखते। लेकिन उसमें एक बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। एक जगह पर उन्होंने देखा कि श्री नारायण जी आराम से लेटे हुए हैं शैया पर और श्री लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। तो बाबा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नारायण इतना थक गया है जो श्री लक्ष्मी को पांव दबाना पड़े। अपने आर्टिस्ट को बुलाया और कहा पहले इसको मुक्त करो, ऐसा नहीं हो सकता है। माताओं बहनों के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत भावना थी। गीता का नित्य पाठ खुद भी करते और जहां भी रहते वहां पर कोई भी घर का सदस्य नाश्ता नहीं कर सकता जब तक गीता पाठ न करे न सुने। तो आप समझ सकते हैं कितने भक्ति के संस्कार थे। और साथ साथ एक लक्ष्य रहता था कि अगर मेरी 1 रुपए की कमाई है तो उसमें 2 आना धर्मार्थ दान में जाना चाहिए। तो वो भी एक संस्कारों में था, दान के संस्कार थे, भक्ति के संस्कार थे, और समाज के अंदर बहुत ऊंची नजर से लोग देखते थे, क्योंकि वैष्णव कुल था, वल्लभाचारी थे, कभी भी उन्होंने नान वेज शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, लौकिक में भी। शिव बाबा जब उनमें आए तब की कहानी अलग है, लेकिन लौकिक जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना महान था, जो सब उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले बहुत ऊंची नजर से, बहुत ऊंची भावना से देखते थे और सम्मान देते थे। लेकिन ऐसा समय आया जो अचानक ही बाबा को व्यापार के अंदर एक वैराग्य आया कि मुझे कुछ करना है, मुझे एकांतवास में जाना है। तो 1936 बाबा बनारस में एकांतवास के लिए अपने एक मित्र के कोठी पर आए, कुछ दिन वहीं रहे और बाहर ब्रांडों में बैठ करके कुछ अलग प्रकार का एक चरित्र जैसे शुरू हुआ। वो दीवालों पर कुछ चित्र बनाते थे पेंसिल लेकर के हाथ से, उनको भी पता नहीं चलता था ये क्या हो रहा है, किस लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। एक दिन अचानक ही वो ध्यानावस्था में चले गए और ध्यानावस्था में बैठे बैठे एकांत में उन्हें इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का बहुत दर्दनाक दृश्य दिखाई देने लगा, आंखों के सामने आया। बाबा ने कभी अपने जीवन में ऐसी युद्ध की हालत, ऐसे बॉम्ब्स और इतने बड़े बड़े भवन कुछ ही सेकेंड में ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, चार प्रकार से बाबा ने विनाश देखा। एक तरफ ग्रह युद्ध, भाई भाई खून कर रहे हैं, खून की जैसे नदियां बह रही हैं। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, और तीसरी तरफ ये बॉम्ब्स का प्रभाव। बॉम्ब्स के प्रभाव से पूरे बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कुछ ही सेकंड में ध्वस्त होती जा रही हैं। चारों तरफ एक बहुत दर्दनाक सीन सामने आई। बाबा उसी ध्यानावस्था में आंसू बहाने लगे, रोने लगे, जैसे क्या हो रहा है, क्या ऐसा होने वाला है क्या, अंदर अंदर सोचते और देखते रहे। थोड़ी देर में वो दृश्य गुम हुआ, लुप्त होने लगा, और उसी दृश्य के स्थान पर फिर दूसरा एक बहुत सुंदर दृश्य, जिसमें उन्होंने देखा कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं, और वो सितारे जब जमीन पर आते हैं तो देवी देवताओं के छोटे छोटे बाल गोपाल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। पूरा ही सुंदर बगीचा, उसमें सोने हीरे के महल, एक बहुत सुंदर संसार जिसको कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसा सुंदर दृश्य बाबा ने देखा। दूध घी की नदियां बह रही हैं, देवी देवताओं की डांस हो रही है, अच्छे अच्छे महल बन रहे हैं, सब कुछ वो स्वर्ग का दृश्य, स्वर्णिम युग का दृश्य देखा। और वो दृश्य देखते एक आवाज आई, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। अब बाबा के अंदर संकल्प चलने लगे, मैं तो एक बिजनेसमैन, एक जवाहरी, मुझे इस दुनिया को कैसे बनाना है, कौन कह रहा है, किसकी प्रेरणा है। उन्होंने समझा शायद कोई गुरु के आशीर्वाद से सब अनुभव हो रहा है। उन्होंने अपने गुरुओं से, जो उनके गुरु थे, बहुत से अलग अलग गुरुओं के पास गए, उनसे पूछा कि ये क्या सब है। तो गुरुओं ने भी कहा, दादा ये मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, ये कोई भगवान की कृपा हो सकती है। अब भगवान की कृपा हो रही है तो उन्होंने कहा बाबा का एक बहुत फेवरेट मंदिर बॉम्बे में था बबुलनाथ, और बबुलनाथ मंदिर के सामने भी बाबा का एक मकान था, कोठी थी, जहां बाबा बिजनेस के बीच बीच में वहां जाते थे। वहां लक्ष्मीनारायण के मंदिर में एक बहुत बड़ी माला थी, उस माला को खींचते थे ऐसे, माला फेरते, वो तो बहुत बड़ी माला थी, तो उस माला को भी स्मरण करते। और बबुलनाथ मंदिर में शिव बाबा पर जरूर जल चढ़ा के दूध चढ़ा के आते थे। उसी मंदिर के नीचे एक श्री नारायण का, श्री कृष्ण का मंदिर है, मैं कुछ दिन पहले गया था वो देखने के लिए। तो बताया गया कि बाबा जब मंदिर से ऊपर, शिव बाबा के मंदिर से नीचे आए, इस मंदिर में बैठे, तो बाबा को विष्णु चतुर्भुज के दर्शन हुए। और विष्णु चतुर्भुज का दर्शन होते ही आवाज मिली अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। ये मन की और हलचल पैदा हुई कि विष्णु मैं कैसे हो सकता हूं, ये कह रहा है जो मैं हूं यही तुम हो। और कई प्रकार के विष्णु के जन्म अवतार जो गए हुए हैं वो भिन्न भिन्न रूप में, एक जाता दूसरा आता, दूसरा जाता तीसरा आता। इस प्रकार बाबा को बॉम्बे में भी अब साक्षात्कार हुआ, ध्यानावस्था में उन्होंने देखा। अब बाबा को अपने बिजनेस में मन ही नहीं लगता था। जब वो कलकत्ता वापस गए तो कहते हैं सारे हीरे जो थे, बड़े बड़े हीरे जवाहरात, बाबा को सब पत्थर लगने लगे, ये व्यापार अब मुझे नहीं करना, अब वो जो कह रहा है वही करना है मुझे। और एक मिनट में ही निर्णय ले लिया, वहां से सीधा अपने कोठी हैदराबाद पहुंच गए। और हैदराबाद में उस दिन ही कुछ समय उनके घर में पोता आया था, परिवार था ना बाबा का, तो बच्चे थे, बहुएं थी, बेटियां थी, सबकी शादी बाबा ने कराई थी खुद ही। बाबा की तीन बेटियां थी और दो बेटे थे, पांच थे, और दोनों बेटियों की तीनों बेटियों की शादी तो बाबा ने अलग अलग करा दी थी, एक बेटे की नहीं हुई थी उस समय और एक बेटे की हो गई थी। तो बाबा की जो बड़ी बहू थी उनके नाम तो राधिका था, लेकिन बाबा ने उसका नाम ब्रज इंद्रा रखा था। तो उस दिन बाबा के घर में गुरु के माध्यम से सत्संग चल रहा था। जब बाबा गए हैं कलकत्ता से वापस अपने घर पर, तो सत्संग में बाबा आगे आगे बैठे थे, गुरु के प्रति इतना आदर था जो कभी भी बाबा बीच से नहीं उठते थे सत्संग से, कुछ भी हो जाए। लेकिन वही एक पहला दिन था जो बाबा बैठे और थोड़ी देर के बाद उठे, सत्संग चल रहा है, गुरु करा रहा है, और बाबा अपने कमरे की ओर चले गए। उनकी बहू ने देखा ये सब क्या हुआ, बाबा आज उठे क्यों, क्या इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो है, नहीं तो ऐसे बाबा कभी नहीं उठता। तो बाबा अपने कमरे में जा रहे गए और वो पीछे पीछे देखने के लिए कि बाबा को कोई तकलीफ हो, कुछ चाहिए, क्या है, मैं जाऊं। लेकिन जब बाबा अपने कमरे में बैठे अपने चारपाई पर जाके, तो वो पूरा कमरा एक बहुत तेज लाल प्रकाश से, पूरा कमरा लाल हो गया, प्रकाशित हो गया। अब इस बहन की, राधिका की बहू की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जाऊं, वो बाहर गेट पर खड़े खड़े देखने लगी क्या हो रहा है। और उसी समय उसी दृश्य में निराकार परमात्मा शिव, जिनका परिचय शायद आज क्लास में मिला होगा आपको, उस शिव परमात्मा की उस दिव्य ज्योति की इनके तन में प्रवेशता हुई। और प्रवेशता होते ही उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे, बाबा तो ध्यानावस्था में थे लेकिन उनकी बहू बाहर खड़े सुन रहे थे और जोर जोर से आवाज निकल रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम 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 प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। वो आवाज बाहर सुनाई दे रही थी और वो बहन सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो आवाज गुम हो गई, लाइट खत्म हो गई और बाबा अपने उसी रूप में जब आए तो बहन अंदर गई और पूछी, बाबा क्या था, क्या अनुभव हो रहा था, क्या हो रहा था? तो बाबा के मुख से निकला, बच्ची कोई लाइट थी, कोई शक्ति थी, कोई माइट थी, कुछ कह रही थी, मुझे पता नहीं क्या था। तब उसने कहा कि आज मैंने आपके मुख से ये शब्द सुने हैं, जिस शक्ति की बात आप कर रहे हैं, ये कमरा पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था और ये आवाज आपके ही मुख से निकल रही थी। अब बाबा का ये जीवन परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में बाबा की दृष्टि अगर किसी पर ऐसे पड़ जाए तो वो ध्यान में चला जाए, ट्रांस में चला जाए। और ट्रांस में क्या देखे, श्री कृष्णपुरी, श्री कृष्ण, गोप गोपियां, राधे नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, कोई कोई सुंदर दृश्य देख रहा है स्वर्ग का, कोई कुछ देख रहा है। और धीरे धीरे इतनी आवाज फैल गई हैदराबाद के अंदर, जो बाबा के शुरुआत के सत्संग में जब पहले पहले बाबा सुनाते थे तो 8-10 माताएं बैठती थी आकर के, लेकिन कुछ ही समय में बाबा का घर छोटा हो गया और करीब 2000 का संगठन बन गया। अधिकतर उस समय और विशेष करके सिंध में, हैदराबाद में बिजनेस के लिए भाई लोग बाहर चले जाते थे और माताएं घरों में ही होती थी। तो सारे जब भाई लोग बाहर जाते थे तो माताओं को समय मिलता था और वो सत्संग में आती थी। और सत्संग में जो बाबा पहले गीता पाठ करते थे, पढ़ के सुनाते थे, बाबा के सामने गीता होती थी लेकिन बाबा पढ़ते नहीं थे, बाबा के मुख से गीता निकलती थी। और वो गीता सुनते सुनते जो उसके महावाक्य थे वो सब बहनों ने, भाइयों ने, जो भी सत्संग में आए उनको समझ में आया कि भगवान मेरे लिए कह रहा है। अभी भी गीता पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, ये अर्जुन के लिए कहा, ये कौरवों के लिए, पांडवों के लिए कहा, ये मेरे लिए कहा, कोई मुश्किल समझता है। तो उसमें जब एक तरफ स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है, कहते थे ओम मंडली में पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है, नाम हो गया था, ओम मंडली क्यों नाम पड़ी उसका इतिहास भी है। जब ये अनुभव बाबा को हुए तो बाबा ने वंदे मातरम का ही नारा दिया, क्योंकि इतनी माताएं बहनें सत्संग में आई। और उसमें से करीब 3-4 कुमारियां एक साथ जो पढ़ती थी, 17-18 साल की उम्र थी, बाबा की दृष्टि जब उन पर पड़ी उनको भी अच्छे अनुभव हो गए और वो भी सत्संग में रोज आने लगी। तो बाबा ने 1937 में एक ट्रस्ट बनाया और उसका नाम रखा ओम मंडली, क्योंकि बाबा के सत्संग में जब शुरू होता था तो ओम की ध्वनि ही देते थे। बाबा भी ओम की ध्वनि देते थे, बहनें भी ओम की ध्वनि देती थी, और जब ओम की ध्वनि देते थे तो ध्वनि के साथ साथ सब ट्रांस में चले जाते, पूरा क्लास ट्रांस में चला जाता था। कुछ शक्ति सी बाबा की थी, उनको स्थापना करानी थी तो लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे और ओम मंडली पूरे सिंध में, प्रांत में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन कुछ ही समय में परीक्षाएं शुरू हुई। परीक्षाएं ये हुई, बाबा के दो मंत्र रहे जो गीता में पढ़ते थे, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत, और अगर इस वैकुंठ की दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए, तो उसके लिए जो देवताएं खाते हैं वही खाना है, दूसरा नहीं। केवल दो बातें, भोजन की शुद्धि, सात्विकता, और मन के विचारों की पवित्रता, ये जब दो बातें हर घर में बहनों ने दृढ़ता के साथ पालन किया और जब उनके भाई पति लोग युगल लोग बाहर से आए घर में और देखा इसका रूप रंग सब बदला हुआ है, खान पान कहती मैं ये नहीं बनाऊंगी घर में, कोई भी विकार की लेन देन नहीं होगी, तो मारपीट शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए घर में, ये कैसे हो सकता है, ये कौन ज्ञान है, ये किसने दिया तुमको, वो सब हंगामा शुरू हो गया, प्रसिद्ध हो गया। वो तो आप लोगों ने शायद सुना होगा थोड़ा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे तो क्या करेंगी, सुरमा पहना देंगी, सुना है बहनों ने तो सुना होगा ना, जादू लगा देंगी, सुरमा पहना देंगी, वहां के ही बन जाओगे, वापस ही नहीं आओगे, बहुत बातें सुने होंगे, सुने हैं, सिंध में तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, और अभी भी यहाँ आए हो तो शायद कोई कोई ने कहा होगा, ऐसा ना हो वहां जाओ तो वहीं के हो जाओ, लेकिन ज्ञान का सुरमा तो जरूर लगता है, जीवन बनता है, चरित्र बनता है। तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा ने क्या किया कि इस ओम मंडली के नाम से कन्याओं माताओं को आगे किया और साथ की एक कमेटी बना करके, ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति उनके आगे समर्पित कर दी। ओम मंडली ओम राधे चलाएगी, जिनको मम्मा कहते हैं, मातेश्वरी जी कहते हैं, इधर ये फोटो लगाइए मम्मा मातेश्वरी जी का, ये 18 साल की उम्र में आई, पढ़ रही थी कॉलेज में, फैशन करती थी बहुत, गीत गाने में नंबर वन थी, सितार पर गीत गाती थी। बाबा ने इसको मुख्य बनाया और पूरा ही ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली रजिस्टर्ड करके इनको मुख्य ट्रस्टी बना दिया। अब जितने घरों में विरोध हुआ उन्होंने तो बहुत हंगामा किया, पिकेटिंग करने लगे, और सबसे ज्यादा बाबा के ही जो संबंधी थे ना, नजदीक वाले, क्योंकि बाबा ने जिनके घरों में शादियां कराई अपनी बेटियों की, अब बेटियां कह रही हैं मुझे पवित्र रहना है, मुझे ये शुद्ध अन्न खाना है, मैं कुछ भी ऐसी चीज घर में नहीं लाऊंगी न बनाऊंगी, तो उनके घर वाले बिगड़ गए कि ऐसा क्या बाबा ने तुम्हें सिखा दिया। और साथ साथ जो भी माताएं बहनें आई उसमें जो दीदी मनमोहिनी की बात मैं कह रहा था, उनकी भी शादी हो गई थी, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, और शादी हुई तो बड़े बहुत सिंध का बहुत नामी ग्रामी परिवार था, मुखिया परिवार था, और उन्होंने जब सुना कि ये क्या 22-21 साल की कन्या कहती मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगी, मैं पवित्र रहूंगी, ये दादा ने इसको क्या जादू लगा दिया, और फिर उन्होंने केस किया, पिकेटिंग कर दी, सारे सिंधी लोग आ गए, पूरे खड़े हो गए दरवाजे के आगे, कोई अंदर नहीं जाएगा, और ये सब छोटे छोटे थे और सब आपके ही घरों के सब बच्चे थे, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। अब वो छोटे छोटे बच्चे सब खड़े हैं कि जब तक मम्मा बाबा अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे, पिकेटिंग हो गई। अब मुखिया लोगों को हारना पड़ा कि ये सब भूखे बैठे हैं, प्यास पानी नहीं पी रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो पिकेटिंग हुई और वो पिकेटिंग थोड़ी देर में कुछ घंटों के बाद पूरी हो गई, विरोध बहुत हुआ। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बहुत हंगामा देखा, राजाओं का राज्य था, तो बाबा को राय दी गई कि भाई बाबा आपके कारण सब हो रहा है, आपको ही सब मारने के लिए आपके ऊपर केस कर रहे हैं, आप ऐसा करो आप अपने आप को चेंज कर लो, चेंज कर लो माना हैदराबाद छोड़ के आप कराची चले जाओ। बाबा का घर कराची में भी था, और बाबा जब कराची आए तो कराची में आते ही बाबा ने अपनी कोठी अलग रखी, अपना परिवार सहित रहे, जो भी उनका लौकिक परिवार था, बच्चे बहू उनके साथ रहे अलग, लेकिन माताओं बहनों का सत्संग दूसरे भवन में शुरू कर दिया, क्योंकि वो माताएं बहनें जिनकी ओम मंडली बनाई थी वो सत्संग चलाती थी, और उस सत्संग में जिनको वहां लगन लगी थी वो सब वहां से भागने लगी। अब भागने लगी तो उनके घर वाले बड़ा विरोध करे, वारंट निकालने लगे कि मेरी बच्ची को भगा लिया, मेरे बच्चे को भगा लिया, ये अंडर एज है, ये है, बहुत केस होने लगे। लेकिन बाबा ने एक बहुत सुंदर नियम बनवाया कि अगर कोई भी सत्संग में आएगा तो अपने परिवार के संरक्षक का पत्र लेकर के आएगा, चाहे पति का लाए, चाहे पिता का लाए, चाहे अपने किसी बड़े का लाए, बिना पत्र के प्रवेश निषेध है। तो पत्र लेने के लिए माताएं बहने अपने परिवार वालों को बहुत मनाया, बहुत रिझाया, बहुत मारे भी खाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो 2 साल का खेल था। 36 के बाद 38 में कराची में आ गए और कराची में करीब 350 का संगठन पक्का मजबूत बना, 400 के लगभग थे, और इतना मजबूत हो गया कि जो सब बंधनों को काट करके, सब समस्याओं को काट करके एक समर्पित रूप से, जैसे एक यज्ञ के अंदर, संस्था के अंदर समर्पित हो गए। उसमें माताएं भी थी, कन्याएं भी थी, बच्चे थे, तो बच्चे जो छोटे थे उनके लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खुलवा दिया, माताओं के लिए सिलाई स्कूल खुलवा दिया, और सिलाई स्कूल के लिए माताएं बहनें अपना पैसा भी लेती कमाती और घर भी चलाती, अपना जीवन निर्वाह भी करती। ऐसे करके ये सत्संग प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। अब दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा समय आ गया, 3-4 साल के बाद ही हंगामे शुरू हो गए, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को, जो भी आए सत्संग में, रहे संस्था में, उन सब को बहुत नए नए अनुभव कराए। जो ज्ञान आप सभी संस्था का सुन रहे हैं, ये सारा ज्ञान छोटी छोटी बच्चियों के ट्रांस मैसेज के द्वारा बाबा ने स्पष्ट किया। एक बच्ची जो 9 साल की थी, अपनी माँ के साथ ज्ञान में आई थी, उनकी माँ और मासी, 2 बहनें और वो बेटी साथ में आई। एक बार तो उनके परिवार वालों ने उसको अंडर एज कह करके वापस बुला लिया बच्ची को, लेकिन वो माँ के कारण फिर से उनको भेजना पड़ा और वहाँ ही बोर्डिंग में वो पढ़ने लगी। उसका नाम शोभा था, सुंदर भी थी और बहुत शांत थी, एकदम ऐसे गुमसुम रहती थी, लेकिन बाबा ने एक बार उसको देखा और देखते ही उस ट्रांस में चली गई। और ट्रांस में जाने के बाद उनका वो पार्ट खुला जो उनके द्वारा ये ज्ञान जो है इस विद्यालय का, वो सब स्पष्ट होने लगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शास्त्र भी पढ़े हुए थे, पुराना भी ज्ञान उनके पास था, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता था कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं, दोनों का ज्ञान मिक्स हो जाता था। और वो जो मिक्स ज्ञान है ना, वो मेरे पास है, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, मैंने वो सारा पढ़ा है, सिंधी में किताब है मेरे पास उस समय की, 46-47 की, 45 की, उसमें बाबा की वो बातें जो उस समय, कुछ ब्रह्मा बाबा जो शास्त्र के आधार से बोल रहा है, और उनके तन में जब शिव बाबा आते हैं तो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान को कोई इतना स्पष्ट समझ नहीं सकता था कि कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जब ये छोटी छोटी बच्चियां ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में जाकर के आकर के वर्णन करती थी, तो बाबा मम्मा के सामने नहीं, उनके आगे डर लगता था उनको, लेकिन दादियां जो छोटी छोटी और बहनें समर्पित थी उनके पास जाती थी, आज मैंने सूक्ष्म लोक देखा, वहां पर फरिश्तों की सभा देखी, वहां पर बाबा का ये रूप देखा, उसके ऊपर हमने मूल वतन देखा जो आत्माओं की दुनिया है, वहां आत्माएं कैसे रहती हैं, और ये सृष्टि चक्र कैसे शुरू होता है, यहां पर देवी देवताओं का जन्म कैसे होगा, सतयुग की शुरुआत कैसे होगी, इस सृष्टि कैसे उत्पत्ति होती है, उसकी आदि क्या है, उसका मध्य क्या है, उसका अंत क्या है, पुनर्जन्म की क्या गति है, कर्मों की क्या गति है, ये सारा ज्ञान जो है इन बहनों के माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों के ट्रांस मैसेज के द्वारा सुनने में मिला। वो सब लिखते गए कागजों पर, लेकिन सत्संग तो केवल लिमिट था, बाहर तो कोई सेंटर नहीं थे, केवल वही 400 लोग जो घर में सत्संग में रहते थे, खाते बनाते और सुनते, और उसके आधार से वो नाटक करते थे, सीन दिखाते थे, धर्मराजपुरी क्या है, स्वर्ग क्या है, जन्म कैसे होगा, पुनर्जन्म कैसे होगा, वो सारा जो देखती थी वो नाटक के रूप में बहने स्टेज पर दिखाती थी, सुनाते थे। ऐसे 14 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। उधर पाकिस्तान बंटवारा हो गया, और बंटवारा हुआ तो जितने सिंधी लोगों के परिवार वाले आए, बहनें घर में वहां रह गई, उनको तो कोई कुछ पूछा नहीं, लेकिन जो भाई बहने भागे वहां से वो तो कुछ ला नहीं सकते थे, और जो नहीं ला सकते थे उनके पास जो कुछ था वो सब वो मंडली को दे दो, बाबा के घर को भर दिया सबने कि हम तो जा रहे हैं भारत, बंटवारा हो गया, अब ये संभालो आप, मोटर गाड़ियां सामान सब बाबा के पास इकट्ठा कर दिया कराची में। लेकिन 3-4 साल के बाद 47 में बंटवारा हुआ और ये सब भागे हैं, आप सब वहां का कहानी कुछ तो होंगे उस समय के लोग, है कोई ऐसे नहीं है, 47 काफी समय हो गया, लेकिन जो आए वो अपने भारत के अंदर सिंधी भाई बहने अधिकतर मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और जहां जहां भी आए बसे आकर के उन्होंने कुछ न कुछ छोटा छोटा बिजनेस शुरू किया। लेकिन वो बिजनेस के संस्कार, उनकी आदत कमाने की, जमा करने की, दान करने की, उसके आधार से वो यहां पर अपना एक स्थान बना करके एक बहुत सुंदर प्रगति की, विस्तार किया भारत में आकर के। और जब यहां बस गया करके तो बाबा की तरफ फोर्स गया कि हमारे बच्चे वहां हैं, पाकिस्तान में क्या ज्ञान देंगे, भारत में दे सकते हैं, भारत का ऊंचा इतिहास है, संस्कृति है, तो इन्होंने निमंत्रण देना शुरू कर दिया, बाबा आप यहां आ जाओ। उनके गुरुओं को बोलने लगे, बाबा को बोलने लगे कि आप बहनों को लेके आ जाओ, हम मदद करेंगे, ये करेंगे। और बाबा भी, शिव बाबा जब इनके तन में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते, बोलते बच्चे अंत समय में आप पहाड़ों पर तपस्या करोगे, आप वहां से विनाश लीला देखोगे, वहां से ऐसा ऐसा होगा, तो कुछ समझ नहीं आता था, हम सागर के किनारे रहने वाले पहाड़ पर क्या करेंगे, कब जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जब भारत से बहुत फोर्स गया तो बाबा ने कहा चलो, अच्छा दीदी मनमोहिनी को कहा जाओ देखो कहां पर रहना भारत में। तो माउंट आबू में बाबा का जो लास्ट गुरु था ना, उसका नाम था गंगेश्वरानंद, और वो गंगेश्वरानंद का यहां आश्रम था आबू में, और उनको भी पता था कि बाबा का इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन 400 का लगभग वहां पर रह रहा है, उनको यहां बुला लिया। तो सबसे पहले बाबा के पास मैसेज दिया कि आप यहां आके देखो, ये बहुत अच्छी तपस्या स्थली है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, और यहां पर आप अपना आश्रम बनाओ, हम आपको मदद करेंगे। दूसरे लोगों ने भी यही कह करके बुलाया, तो बाबा ने दीदी को भेजा और 2 दिन तक वो आबू में रही, दीदी मनमोहिनी और 1-2 बहनें और साथ में। सारा आबू देखा, लेकिन 350-400 लोग रहेंगे कहां, कोई स्थान इतना बड़ा तो मिलता नहीं था। तो कोई ने लास्ट में इशारा कर दिया कि एक यहां पर भरतपुर राजा की कोठी है शमशान के ऊपर, लेकिन बंद पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो ये ले लो। तो दीदी लास्ट में जब वापस जाने लगी माउंट आबू से कि कुछ स्थान यहां पर हमारे लायक नहीं है, तो वो कोठी देखने चली गई, और कोठी बंद थी लेकिन कांच लगे थे, तो कांच से चारों तरफ देखा, बड़े बड़े कमरे हैं, हाल हैं, ये तो 400 लोगों के लिए ठीक है। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने पूछा कहां है इसका मालिक, कौन है, कितने में हमें देगा। तो उन्होंने बात किया और भरतपुर राजा से वो कोठी मिली। 15 मई 1950, अब इतिहास भारत का शुरू होता है। 1950 में बाबा ने जब वहां से आने का संकल्प लिया तो सब सरकार के अधिकारी, राजाएं, वहां उस समय जो मिनिस्टर्स थे, जो वहां का उस समय मिनिस्टर था उसका पोत्र अभी ज्ञान में चलता है, अभी आया था कराची से, उन उन सब ने कहा बाबा आपका जितना सामान है सब ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं छोड़ो, भले भारत जाओ कुछ छोड़ के नहीं जाओ, ले जाओ। अब 350 का सामान, खाने पीने का सामान, बिस्तर और जो छोड़ के आए थे गाड़ियां ये वो सब लोग सब लाना था। तो लाने के समय बहुत बड़ा शिप बुक किया, पहले कराची से ओखा बंदरगाह गुजरात में, और वहां से ट्रेन बुक करके फिर पूरी ट्रेन भर करके सामान सहित 15 मई 1950 को ये आबू में शिफ्ट हुए। अब शिफ्ट तो हो गए, लेकिन शिफ्ट होने के बाद परीक्षाएं शुरू हो गई। क्या परीक्षाएं आई होंगी? सबसे पहले बात, बाबा के पास जो अपनी संपत्ति थी जिससे 14 साल तक इतना बड़ा परिवार खाया पिया रहा, कोई भी प्रकार का बाहर का सहयोग नहीं था, संबंधी लोग भी बहुत विरोध करते थे। अब यहां जब आए तो शिप का किराया और ट्रेन का भाड़ा, पैसा खत्म। उस समय भागीदार के साथ जब सौदा किया था, भागीदार ने कहा बाबा आप जितना चाहिए आप ले लो, जो हमको देना दे दो, जवाहरात की परख हमें नहीं है, भले आप रखो। तो बाबा ने वो जवाहरात बैंक में रखवाई और उसका पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया। 14 साल तक यज्ञ चला, कोई भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आई। यहां तक लोग कहते थे वो मंडली वाले तो पिस्ता बादाम खाते हैं। इतना साहूकारी के साथ बाबा ने पालना की, पढ़ाया लिखाया बड़ा कराया। छोटे छोटे बच्चे जो आए माँ बाप के साथ वो इतने बड़े हुए। और ये सत्संग जब भारत में आया तो सबसे बड़ा परीक्षा, एक तरफ पैसा खत्म और दूसरी तरफ इनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, सब सागर के किनारे थे और यहाँ इतनी ठंडी थी। मई के बाद जून शुरू होते ही यहाँ तूफान फाग बरसात और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है जून के बाद जुलाई अगस्त में, तो अधिकतर सब के सब बीमार हुए। और दूसरी तरफ दवाई नहीं पैसा नहीं, और जो था वो लाए थे वो सब बेच बाच करके खाया पिया रहे, कोई सहयोग नहीं। 1-1.5 साल की वो जो परीक्षा थी वो बाबा ने इतना बहुत प्यार से ली। और उस परीक्षा लेने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ये सब समझते थे कि हम मरेंगे रहेंगे जिएंगे बाबा के साथ, बाहर नहीं जाएंगे। अब बाहर नहीं जाएंगे तो विश्व की सेवाएं कैसे होंगी, सबको संदेश कैसे मिलेगा? तो दो ग्रुप ऐसे बने, एक जो कच्चे बच्चे थे माना जिनको निश्चय इतना नहीं था, उनको ये आया कि हम तो अभी जवान हैं, कमा सकते हैं कुछ कर सकते हैं, बाबा मुझे छुट्टी दे तो मैं जा करके कुछ धंधा करूं नौकरी करूं पैसा कमाऊं। और बाबा कहे बच्चे तुम तो समर्पित हो गए, मरना तेरी गली में, अब कहां जाओगे? लेकिन नहीं जाऊंगा, ऐसे जिद करके कुछ लोग निकले और निकल करके अपना अपना बिजनेस किया, कोई ने बॉम्बे में कोई कलकत्ता में कोई विदेश चले गए वापस, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन गए जाकर के, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं उसकी कहानी सुनाता हूं थोड़ी देर में। लेकिन जो पक्के थे कि मैं कहीं नहीं जाऊं, जो बाबा कहेगा वही मैं करूंगा, उनको बाबा ने कहा तुमको तो अविनाशी धन मैंने दिया है, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, चरित्र का धन सबसे बड़ा धन है, गुणों का धन सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हारे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है, और लिख दो अखबार के अंदर ओ मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। खाने के लिए लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। बाबा का नशा इतना था, बच्चे मांगने से मरना भला, तुमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, भले जाओ घर वाले बुलाते हैं, मांगना नहीं किसी से। और सचमुच वो दादियां जिनको हम दादियां कहते हैं, वो बहनों ने वो तपस्या की थी 14 साल। और बाबा ने कहा जाओ अपने अपने घरों में, भले मिल के आओ सबसे जिन्होंने बुलाया है, लेकिन ध्यान देना वो तुमको टच न करें, बहुत बड़ी बात थी, और सिंधी समाज में तो आते ही पहले गले लगाएंगे, मिलेंगे। तो ये जब दादियां निकली, बहनें गई सेंटर्स पे, इधर उधर जहां जहां उनके संबंधी थे, उनकी रूहानियत, उनका रुहाब, उनका बोल, उनकी चाल, उनका चलन, एकदम जैसे कोई परी फरिश्ता ऊपर से उतरा हुआ है। जिस घर में गई उस घर में खाएंगी नहीं, कोई नॉन वेज नहीं खाएंगी, कोई ऐसी चीज किसी के हाथ की नहीं खाएंगी। तो देवी की तरह इनकी सबकी पूजा हुई, पैसा भी मिला, पूजा भी हुई। लेकिन बाबा ने कहा, अच्छा तुम्हारे पास धन है, जाओ इलाहाबाद में मेला लगता है कुंभ का, चित्र उठाओ, चित्र बनाए थे हाथ से, चित्र लेके जाओ और संदेश दे करके आ जाओ। अब जो बहनें बिल्कुल खुले बाल और वो सफेद ड्रेस एकदम देवियों जैसे, न उनको पता पैसा क्या होता है, ट्रेन क्या होती है, लोग क्या होते हैं, कलयुग क्या है, पता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बाबा के कहने अनुसार सेवा शुरू की, और सबसे पहले जब कुंभ मेले में त्रिवेणी पर बैठ करके ज्ञान देना शुरू किया, चित्र ले करके, जो सामने आए वो देखे, ये बहनें तो यहाँ की नहीं लगती हैं, ये तो कोई देवियां हैं, ये तो कोई अवतरित हुई हैं, ये यहाँ क्यों बैठी हैं? अरे दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हो, चलो आपको मकान देते हैं, आपका स्थान ये नहीं, ये तो भिखारियों का स्थान है। और उसी समय से सेंटर्स खुलना शुरू हुए, कलकत्ता में पहले, दिल्ली में खुला, फिर कानपुर में खुला, लखनऊ में खुला, चंडीगढ़ में खुला, सेवाएं बढ़ती गई, निमंत्रण मिलते गए। और एक निमंत्रण मिला था, एक ऋषि के हरिद्वार का सन्यासी देख के आया था, उसने कहा इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, और जापान के अंदर उस समय धर्म संसद हो रही थी, अगर ये बहने जाएंगी तो बड़ा अच्छा प्रवचन करेंगी। तो हरिद्वार में एक बहन को पहले बुलाया प्रवचन के लिए, हमारी गंगे दादी थी जो कानपुर में रहती थी, उनको बुलाया, और उनका भाषण जब सुना तो इतना प्रभावित हो गया कि आपको जापान जाना है। बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा ठीक है, निमंत्रण मिला है तो हम भेजेंगे। तो हमारी दादी प्रकाशमणि और दादी रतनमणि जो कलाई थी आपके बीच में, और एक दादा आनंद किशोर थे, वो इंग्लिश अच्छी जानते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बाबा के लौकिक में संबंधी भी थे, दामाद लगते थे, उनको बाबा ने जापान के लिए भेजा। और वो लोग जापान में दो साल डेढ़ साल रहे, हांगकांग जापान उस साइड की पूरी पूर्वी ईस्ट की सेवा की, और जो सेवा से मिलता था उसके चित्र बनवाए, पैसा नहीं लिया किसी से, चित्र बनवाए, और वो चित्र भर करके पूरा सिप लेकर के भारत आए। और बाबा इतना उन पर खुश हुआ कि बच्चों ने कमाल कर दिया, इतने अच्छे अच्छे सुंदर चित्र छपा करके पूरा सिप लेके आई, और उन चित्रों के द्वारा फिर भारत के अंदर सेवाएं शुरू हुई। अब भारत में सेवाएं जब शुरू किया तो लोगों को लगे ये क्या ज्ञान है, नया ज्ञान, नई नई बातें, जो आज हमारे भारत की संस्कृति से कुछ बातें अलग दिखाई देती हैं। लेकिन ये ज्ञान जीवन परिवर्तन के लिए है, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, यही सत्य ज्ञान है। इस ज्ञान को जिन लोगों ने अनुभव किया, समझा, धारण किया, वो पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। और उन्होंने फिर निमंत्रण दिया, जितने हमारे सेंटर्स खुलते गए, हेडक्वार्टर जाके नहीं खोला, लेकिन बहनों ने जाकर के जब वहां ज्ञान दिया, तो ज्ञान को जिन्होंने धारण किया, जिनको अच्छा लगा, उन्होंने निमंत्रण दिया। और ये खास लिखा कि आप हमें दो बहने चार बहने दो, हम इनको भवन का प्रबंध, इनकी सुरक्षा का प्रबंध, इनके खर्चे का पूरा प्रबंध खुद करेंगे। तब ये सेंटर शुरू हुए। अभी आप सोचना, यहां पर एक बात क्लियर हो जाएगी, ये संस्था चलती कैसे है। यहाँ कोई डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, कोई को कुछ पहले बोलते नहीं है पैसा कितना लगेगा, फिर भी इतना बड़ा वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, उसके पीछे का राज क्या है, हर एक को जानना चाहिए और जानने की इच्छा भी होती है। सहयोगी तो बहुत हैं बाबा के बच्चे, लेकिन इसके पहले मैं, उसे टाइम हो रहा है, मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत बड़ा इतिहास है। इसके पहले मैं एक बात सुना दूं, जो हमने कहा था दो ग्रुप बने थे उस समय जब परीक्षा ली बाबा ने एक साल की, उस समय भी एक दिन भी भूखा नहीं रखा बाबा ने, खिलाया रोज। लेकिन ऐसी परीक्षा थी कि दोपहर को क्या बनेगा, सुबह भंडारे में चार आना भी नहीं है। भंडारे को जो भोजन बनाने वाली बहन है, इंचार्ज है, वो बाबा के पास जाती है कि बाबा आज क्या बनेगा, ना दाल है ना चावल है ना सब्जी है ना कोई चीज है। बाबा वेट एंड सी, बच्ची रुको। 11 बजे के लगभग पोस्ट आती थी और पोस्ट में कोई ना कोई पैसा भेज देता था और उस पैसे से अनाज आता था, उसी समय राशन आता था और उसी समय 1 बजे डेली 1 बजे रोज भोजन की बेल बज जाती थी 300-400 लोगों की। एक दिन भी भूखा नहीं रखा। लेकिन परीक्षा ऐसी थी जो लोग संशय बुद्धि बन जाएंगे, ऐसा क्या हो सकता है, अब क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह था और इतना बेफिक्र था, एक दिन की बात सुनाता हूं, कहानी ही है, कहानी बन गई इसकी। एक दिन होली का त्योहार था और होली के त्योहार पर जलेबी बनती, जलेबी का भोग गेवर बनाते ना, सिंध में भी बनाते हैं। तो बाबा ने रात को बोल दिया कि बच्चे कल होली का त्योहार है, जलेबी का भोग लगना चाहिए। अब शाम को मुरली चलाई, शाम को क्लास में बोला और सवेरे भोग लगना है। तो उसी समय जो भंडारे वाली बहन थी वो कहती, बाबा आपने क्या बोल दिया, जलेबी का भोग लगेगा, कैसे लगेगा। अब बाबा कहता, बच्ची मैंने नहीं बोला, ये जो शिव बाबा आता है ना वो बोल के चला गया। अब शिव बाबा भगवान बोल के गया है तो जरूर खिलाएगा ना, संशय क्यों करती हो, मैंने नहीं बोला है, वो बोल के गया। लेकिन उसने एक विधि बताई है कि कोई भी विघ्न आए, कोई भी परीक्षा आए, तुम योग करो, बाबा को याद करो। तो हम सब बच्चे आज 2 बजे योग करेंगे। अब होली का त्योहार पहला दिन और 2 बजे योग शुरू हो गया। लाल लाइट होती है हमारे योग में, ज्यों लाल लाइट हुई ना, सामने घर में एक सिंधी परिवार रहता था, वो माता जी छिप छिप करके क्लास में आती थी और भाई जो था बहुत बाबा को गाली देता था, ये बाबा को क्या हो गया है, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के घूमता है, इसका क्या मतलब, बहुत कुछ बोलता था बाबा के लिए, गाली देता। अब वो जब देखा 2 बजे रात को लाल लाइट जली है तो उसकी नींद फिट गई और नींद फिटते ही उसको उठाया साथी को, युगल को, कहता है देख तेरे बाबा ने आज क्या किया, त्योहार के दिन भी बच्चों को सोने नहीं देता, योग में बिठा दिया। और मेरे को बार बार कह रहा तेरे पास जितना भंडारे में अंदर रखा अलमारी में सब ले आ, ऐसा करो बाबा मुझे सोने नहीं देगा, तुम देखो अलमारी में कितना पैसा रखा है, अभी उठाओ और अभी दे आओ। वो कहती है अरे तेरा क्या दिमाग है, अभी कैसे 2 बजे जाऊंगी मैं, सुबह दे आऊंगी जाके। तो क्या कहता है, सुबह तक मेरा दिमाग बदल जाएगा, अभी जाओ। उधर योग चल रहा है, उधर उसकी नींद फिटी है, जितना पैसा उसके अलमारी में था सब उठा के उसने हाथ में उसको दिया पत्नी को और भेज दिया बाबा के पास। वो जब आई तो दादियां बाहर, देखा कौन आ गया, बाहर निकली तो बोली तुम क्यों आई भाई, तेरा पति गालियां देता गुस्सा करता, तुम रात क्यों क्यों आई। बोला अरे उसको नींद नहीं आ रही है, वो मेरे को ये सब दिया है, दिया हो जा करके। अब आप समझ सकते हो कौन कराता है सब, सुबह सुबह सब आ गया सामग्री, तेल भी आया, चीनी भी आई, जो जरूरत होती जलेबी के लिए सब कुछ आया और बाबा को जलेबी का भोग लगा और सबने जब भूखाया। बाबा ने भूखा नहीं रखा, जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन जो दूसरा ग्रुप गया था उसके विषय में मैं सुनाना चाहता हूं, जो कमाने के हिसाब से गया था, कैसे भी गया, वो भले पवित्र नहीं रह पाए, ज्ञान में नहीं चले, लेकिन बाबा के प्रति बहुत प्यार था, बाबा के प्रति जिगरी प्यार था, ज्ञान से बहुत प्यार था। तो जहां जहां गए वहां पर जब विदेश में सेवाएं हमारी शुरू हुई तो वहां पर उन्होंने बड़े प्यार से निमंत्रण देकर के सेंटर बना के दिए। मैं अफ्रीका गया और अफ्रीका में एक क्या बोलते हैं देश है लुसाका के बाद एक और है जहां पर मैं गया था, वहां पर कालों का पूरा राज्य है। दक्षिण अफ्रीका में पूरे काले हैं, नहीं पश्चिम अफ्रीका में। तो मुझे भेजा दादी ने कि जाओ एक बार चक्कर लगा के आओ। तो मुझे कहा गया कि यहां पर 24 घंटा बिजली नहीं रहती है। और जब मैं एरोड्रम पर उतरा तो वहां पर सचमुच वो पट्टे पर जो हमारा सामान आता ना वो भी नहीं था, हाथ से उठा के ले जाना था। तो हाथ से लेकर के सामान जब मैं बाहर निकला तो बहने भाई हमारे को रिसीव करने आए थे और मैंने सुना था ऐसा देश है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें भी सुनाई थी। लेकिन जब हम अपने सेंटर पर गए तो क्या आलीशान भवन और वहां पर बिजली, सब प्रकार की लाइट, एसी सब चल रही है। तो मैंने कहा, मैंने सुना कुछ था, देखा कुछ, ये क्या है? तो पता क्या मुझे जवाब मिला कि यहां बाबा की दो ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने जवाबदारी ली है 12 घंटा डीजल हमारी तरफ से, 12 घंटा जनरेटर हमारी तरफ से। जनरेटर दो लगे हैं बड़े बड़े और 12-12 घंटे का डीजल ये दो बहनें संभाल रही हैं जो आपके यहां की पहले निकली हुई बहनें हैं। माना जहां पर भी वो लोग गए उन्होंने बड़े बड़े सेंटर बनवाए हैं, बहनों को निमंत्रण दिया है, हर प्रकार के खर्चे संभालती हैं। हांगकांग में, लंदन में पहले मैं गया तो वहां पर भी मैंने देखा बहुत स्थानों पर सिंधी भाई बहने इस सेवा के विस्तार में निमित्त बने और आज बड़े बड़े सेंटर्स विदेश में उनका आर्थिक सहयोग वही बाबा के बच्चे दे रहे हैं। और भारत के अंदर तो सेवाओं का विस्तार होता रहा, होता गया, होता गया। और बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर खुलेंगे। बाबा जब अव्यक्त हुए हैं 69 में, बाबा ने शरीर छोड़ा 93 वर्ष की आयु में। अब बाबा अव्यक्त हुए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, अब इनकी मुरली कैसे चलेगी, अब बाबा कैसे मिलेगा, शिव बाबा कैसे आएगा। तो 18 तारीख को शरीर छोड़ा, 19-20 बाबा की बॉडी को रखा गया। पांडव भवन में जाओगे आप देखोगे उनकी समाधि है वहां पर। और 21 तारीख को जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वही गुलजार दादी, वही शोभा कुमारी 9 साल वाली भोग लगाने के लिए जब बैठी 21 जनवरी 69 ट्रांस में गई और बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं प्रवेश हुई। और प्रवेश होने के बाद आगे इस विद्यालय को कैसे गति देनी है, कैसे बढ़ाना है, दो बहनों को निमित्त बनाया, दीदी मनमोहिनी जिनके नाम से भवन बना हुआ है और दादी प्रकाशमणि। और मातेश्वरी ने 65 में शरीर छोड़ दिया था। बाबा के अव्यक्त होने के बाद इन दोनों बहनों ने प्रशासन अपने हाथ में लिया और बाबा ने जितना साकार में कहे थे शब्द उन सब को साकार रूप दे दिया। बच्चे गली गली में सेंटर खुलेंगे, विदेश में संस्था जाएगी, वहां सेंटर्स खुलेंगे। इन बहनों ने सबको संगठित किया, सबको एक किया। भले बाबा ने उनको हेड बनाया, मुखिया बनाया, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा। दादी कहती थी, मैं हेड जिस दिन हो जाऊंगी उस दिन मुझे हेडक हो जाएगा, मैं हेड नहीं हूं, हेड शिव बाबा ही है। इस यज्ञ का मुखिया वही है, वही चलाएगा और वही आज तक चला रहा है। हमारी दादियों ने 3 बातों को एक मंत्र बना दिया कि हमें उन्होंने निमित्त बनाया है। निमित्त बनाने वाले को अभिमान नहीं आता, जिसने बनाया है उसका काम मैं ट्रस्टी बन के करूं। लेकिन निमित्त बनने के साथ इतनी निर्माण चित रही जो हरेक आत्मा को अपने से भी आगे रखा। आज 51-52 साल से मैं यहां समर्पित हूं, 16 साल की उम्र में समर्पित हुआ, जितना बाबा का पढ़ाई का कार्य था, कोर्स था, वो सब मेरे को दिया गया। मैंने पढ़ा, सीखा, यहीं से सब सीखा और यहाँ से ही आज पूरे ही विश्व के अंदर 140 देशों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्या पढ़ाना है वो बाबा ने मुझे निमित्त दिया, दादियों ने मुझे निमित्त दिया। सवेरे सवेरे जो हमारे यहाँ पर चलता है सेंटर मधुबन में, आप किसी भी कोने में चले जाओ वही चीज पढ़ी जाती है, वही सुनाई जाती है, और उसे मुझे 3 महीने पहले तैयार करना पड़ता है। मैं सेट करता हूँ, तैयार करता हूँ बाबा के महावाक्य, उसमें कुछ सार है, वरदान है, स्लोगन है, वो ऐड करता हूँ बाबा की मुरलियों से, और पूरे पढ़ाई का कोर्स बाबा ने जो पढ़ाया है अभी रिवीजन है, रिवाइज हो रहा है, और आप सब बहुत भाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी भाग्य बनाने का समय है। सिर्फ ध्यान देना, जो समय बचा है अपने संकल्पों को बहुत स्थिर एकाग्र करके निमित्त भाव से बाबा को साथी बनाओ। करावन हार वो है, करण हार हम हैं। अभिमान ना आए, जो कुछ है दिया हुआ उसका है। क्या कहते हैं प्रभु, ये सब तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। भक्ति में तो कहते थे ना, ऐसा तो नहीं भगवान तेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा नहीं करना, ये जो कुछ तेरा है, जो तूने मुझे दिया है सब तेरा है। तेरा तेरे को अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये जो शक्ति, जो तन मन धन मिला है बाबा के आगे समर्पित करके, सफल करके और अपने जीवन को महान बनाओ। बाबा ने हजारों आत्माओं का जीवन बनाया, आज 13 लाख परिवार इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हजारों बहनें समर्पित हैं और निःशुल्क रूप से बिना पे लिए हुए दिन रात सेवाएं दे रही हैं। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा कार्य आप अपनी आंखों से देखो। बाबा ने बीज कितना छोटा डाला, 300 साढ़े 300 की संस्था आज कितने लाखों में बदल गई। ये हमारे बाबा की, दादा की, आपकी कमाल कहें, शिव बाबा की कमाल कहें, जो आज विश्व परिवर्तन के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़े ऊंचे स्थान से ज्ञान और योग की शिक्षाएं दे रहा है, मानव आत्माओं के चरित्र को ऊंचा बना रहा है। ओम शांति। दो मिनट योग करके फिर पूरा करेंगे। बाबा का शुक्रिया करना।
दुख तुझ में पा।